आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में नौजवान लीडरों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के सफर में नौजवानों को शामिल करने के ताल्लुक से ये एक मुनफरिद पहल है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 बरस में मनशियात को जब्त करने में 7 गुना इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन में शुमाल मगरबी भारत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कुआलालंपुर में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी से हार गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत नौजवान लीडरों की मुज़ाकरात एक मुनफरिद पहल है जिससे मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की के सफर में शामिल होने का मौका मिलेगा। जनाब मोदी ने नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मुमलिकत रक्षा खड़से के तहरीर करदा एक मजमून में लोगों को शरीक किया है। ये मजमून नौजवानों के कौमी फेस्टिवल 2025 और विकसित भारत नौजवान लीडरों के मुज़ाकरात के मौजू पर है। वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोग्राम विकसित भारत के तस्वुर को पूरा करने की गरज से नौजवान जहनों की तवानाई, तख्लीकियत और क्यादत को सिमत अता करने के मकसद से शुरू किया गया है। नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में हिस्सा लेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जनाब मोदी मुल्क भर से आए हुए 3000 हमजहत नौजवान लीडरों के साथ बातचीत करेंगे।
विकसित भारत चैलेंज के जरिए मुल्क भर से 3000 नौजवान लीडरों को मुंतखब किया गया है। वजीर आजम मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे जो मुल्क के मुस्तकबिल के लीडरों को तरगीब देने, तहरीक देने और बाइख्तियार बनाने के लिए वजह की गई हैं। इस तकरीब के दौरान नौजवान लीडर विकसित भारत के लिए अपने तस्वुर पर अपने प्रेजेंटेशन का मुजाहरा करेंगे। इन प्रेजेंटेशन के जरिए भारत के बाद इंतहाई अहम नौयत के चैलेंजों से निमटने के लिए इख्तराई तस्वुरात और हल पेश किए जाएंगे। जनाब मोदी नौजवानों के साथ दोपहर के खाने में शरीक होंगे जिससे उन्हें बराह रास्त अपने ख्यालात, तजर्बात और उमंगों पर उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। वजीर आजम 10 अलग अलग मौजूदात पर शुरका के जरिए तहरीर किए गए बेहतरीन मजामीन के एक मजमूए का इजरा भी करेंगे। ये मौजूदात मुख्तलिफ शोबों जैसे टेक्नोलॉजी, पायदारियत, खवातीन की बाइख्तियारी, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत का इहाता करते हैं। विकसित भारत मुज़ाकरात नौजवान लीडरों को एक मौका फराहम करता है कि वो पॉलिसी साजों, कौमी और आलमी लीडरों के साथ बराह रास्त बातचीत कर सकें, साथ ही मुल्क के मुस्तकबिल को शक्ल सूरत देने के ताल्लुक से अपने ख्यालात का तआवुन पेश कर सकें। दीपेंद्र कुमार, सुमित शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के पहले दिन खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बात को उजागर किया कि ये तकरीब यौम आज़ादी पर बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के सियासत में 1,00,000 नौजवानों को शामिल करने के वजीर आजम के ऐलान से मुताबिकत रखती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवान अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई सोच और नौजवानों के काम के तरीके से भारत को दुनिया में एक नई शनाख्त मिलेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की कुव्वत को तस्लीम करती है। वजीर दिफा ने मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए आज ये बात कही। जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की मजबूती की जड़ें उसके नौजवानों के इल्म, महारत और अज़्म में पैवस्त हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों की उमंगे, इखलास और ख्यालात आलमी सतह पर भारत की शनाख्त की नई तारीख मुतय्यन करेंगे।
हमने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी पीढ़ी के द्वारा किया गया काम निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आपके द्वारा देखे गए सपने, आपकी नई सोच और आपके द्वारा किए गए काम भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे।
وزیر دفاع نے طالب علموں سے کہا کہ وہ سوامی ویویکانند کی زندگی اور ان کے تصورات سے ترغیب حاصل کریں. انہوں نے کہا کہ آج کا نوجوان اپنی مضبوط قوت ارادی کے ذریعے بھارت کو ایک بار پھر وشو گرو بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ پچھلے 10 برس میں منشیات ضبط کیے جانے میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف لڑائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نیا استحکام حاصل ہوا ہے. نئی دلی میں منشیات کی نقل و حمل اور قومی سلامتی کے موضوع پر علاقائی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ پچھلے 10 برس میں 56,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی منشیات کو ضبط کر کے ضائع کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2024 میں 16,900 کروڑ روپے سے زیادہ کی منشیات ضبط کی گئیں جو آزادی کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کو کنٹرول کرنے کے بیورو اور ملک بھر کی پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کی ہے جس سے منشیات سے پاک مستقبل کی جانب نوجوان اور معاشرے کو استحکام ملا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے سخت کارروائی کے ذریعے منشیات کے پورے نظام کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک مضبوط پیغام دیا ہے. وزیر داخلہ نے تمام ریاستوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ منشیات کی لعنت کے خلاف لڑائی میں مرکزی حکومت کا ساتھ دیں. جناب شاہ نے وضاحت کی کہ حکومت ملک میں یا ملک سے باہر 1 کلو منشیات بھی اسمگل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ شہریوں کے درمیان مانس ہیلپ لائن کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں.
سبھی راجیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مانس ایپ اور ہمارے ٹول فری نمبر کو ہم لوک پریہ بنائیں, اور ٹول فری نمبر پر جو فون آتے ہیں اس پر تبھی اور پرینام لکسی کارواہی کر ٹول فری نمبر کی وشوسنیتا بڑھانے کی بھی ہم سب کی ساجا ذمہ داری ہے.
تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے 15 روزہ ڈرگ ڈسپوزل اور تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے مانس 2 ہیلپ لائن کی توسیع کا افتتاح بھی کیا. 15 روزہ منشیات کو ضائع کرنے کی مہم اس ماہ کو 25 تاریخ تک جاری رہے گی. اس مدت کے دوران کل ضبط کی گئی 44,000 کلوگرام منشیات کو ضائع کیا جائے گا. حج 2025 کے لیے مختلف ریاستوں کے 3,676 درخواست گزاروں کو عارضی سیٹیں الاٹ کر دی گئی ہیں. آج بھارتی حج کمیٹی نے اس سال کے سفر حج کے لیے دوسری ویٹنگ لسٹ جاری کی ہے. اقلیتوں سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ ان درخواست گزاروں کو اس ماہ کی 23 تاریخ تک حج کے اخراجات کے لیے 272,300 روپے لازمی طور پر جمع کرانے ہوں گے. اس نے درخواست کرنے والوں سے اس سلسلے میں ضروری دستاویزات بھی داخل کرنے کو کہا ہے. بھارتی حج کمیٹی 1,22,000 عازمین حج کو سہولت فراہم کرے گی جنہیں اس سال حج کی سعادت نصیب ہوگی. یہ آکاشوانی ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے الزام لگایا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے پچھلی 1 دہائی سے دلی میں ایک آفت پیدا کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران پورے ملک کی ترقی ہوئی لیکن دلی کی ترقی کے سفر میں تنزلی آئی ہے. نئی دلی میں آج جھگی بستی پردھان سمیلن کے موقع پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس دلی کے عوام کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صرف ووٹ بینک کی خاطر وعدے کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دلی میں بی جے پی کی سرکار تشکیل ہونے کے بعد غریبوں کے لیے کوئی بھی فلاحی اسکیم رکے گی نہیں.
بھارتیہ جنتا پارٹی کا گھوشنا پتر یہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے, یہ مودی کا گارنٹی ہوتا ہے جس کو زمین پر اترنا ہی ہے. بھاجپا کا گھوشنا پتر آپدا کے گھوشنا پتر جیسا نہیں ہوتا. ووٹ لے لیے اور کہہ دیا ہو جائے گا, پھر 5 سال کے بعد نئے جھوٹ کے ساتھ ہم ووٹ لینے آئے, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا سنسکار نہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کر کرتے ہیں اور ہم وہی کہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ پی ایم آواس اسکیم کے تحت اروند کیجریوال کی وجہ سے دلی کو چھوڑ کر ملک بھر کے 3,58,00,000 لوگوں کو گھر ملے ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ بی جے پی حکومت سلمز میں ہر خاندان کو مستقل گھر فراہم کرے گی. انہوں نے 70 سال سے زیادہ کی عمر کے افراد کے لیے 10,00,000 روپے تک کے مفت میڈیکل تعاون اور 70 سال کی عمر سے کم کے افراد کے لیے 5,00,000 روپے تک کے میڈیکل تعاون کا وعدہ بھی کیا. बीजेपी ने दावा किया है कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले की वजह से 2000 करोड़ रुपए के महसूलात का नुकसान हुआ है। पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आबकारी घपले की अहम कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की टूटी सड़कों, गंदे पानी, बढ़ते हुए बिजली के बिल और कूड़े के पहाड़ों और आलूदगी का कोई जवाब नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बने। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है।
इधर आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट जाली है। उन्होंने कहा कि मुबैना घपले के मामले में जनाब केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
इन सारे आरोपों पर अब भाजपा को, ईडी को, सीबीआई को कोर्ट ने बार बार लताड़ा और वही घिसे पिटे आरोप लेकर भाजपा फिर से आ गई है, क्योंकि चेहराहीन मुद्दाहीन पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं।
भारत ने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस की अक्वामे मुत्तहिदा की माहिरीन की कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कमेटी के एक हिस्से के तौर पर भारत सरकारी आदाद व शुमार के मकासद के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस को मजीद फरोग देने की गरज से आलमी मेयारात और तरीक़ा कार वजा करने में तआवुन देगा। महाकुंभ 2025 का आगाज पीर को पहले अमृत स्नान के साथ होगा। इस अजीमुशान तकरीब के मौके पर लोगों की कसीर तादाद के पेश नज़र यहां सेहत की देखभाल की जदीद तरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
45 रोजा महाकुंभ में अकीदतमंदों को न सिर्फ आस्था का एक अनोखा एहसास होगा बल्कि उन्हें बेहतरीन तिब्बी खिदमात भी फराहम की जाएंगी। सेहत की देखभाल के इकदामात के तहत नेत्र कुंभ आई फेयर अहमियत का हामिल है, जिसका मकसद बीनाई के मसाइल से निमटना है। परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला मरकजी अस्पताल मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करेगा, जिसमें ओपीडी से लेकर आईसीयू खिदमात तक दस्तियाब रहेंगी। अहम रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम्स भी बनाए गए हैं। मुल्क भर से 240 डॉक्टरों की एक टीम महाकुंभ में हिफ्जान सेहत के निजाम को मुस्तहकम करेगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में जारी गहरे कोहरे की सूरत हाल के सबब आइंदा 2 दिनों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हल्की बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मगरब की सिमत से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर कल तक मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में IMD की साइंसदान डॉक्टर सोमा सेन ने कहा कि इस माह की 14 तारीख तक सुबह सवेरे और रात के दौरान शुमाली रियासतों में गहरा कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।
हमने येलो अलर्ट के साथ थंडरस्टॉर्म का वार्निंग और साथ में ओलावृष्टि का वार्निंग दिए हैं पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश।
दिल्ली NCR और इससे मुतसिल इलाकों में आज हल्की से औसत बारिश हुई, जिसके सबब कौमी राजधानी में दर्जे हरारत कम हो गया। कोहरे के सबब हावड़ा राजधानी समेत दिल्ली में तकरीबन 35 ट्रेनें और मुख्तलिफ परवाजों में ताखीर हुई। लद्दाख में दर्जे हरारत गिरकर इंतहाई कम हो गया है। दरास में -25 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। कारगिल में -14.6 डिग्री और लेह में -13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता सबसे ज्यादा कम दर्जे हरारत जोजीला में रिकॉर्ड किया गया, जहां इंतहाई कम होकर ये -31 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत था। आज कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स मुकाबले में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी जनूबी कोरिया की सियो सुंग चे और किम वुन हो की जोड़ी से 10-21 और 15-21 से हार गई। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में नौजवान लीडरों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के सफर में नौजवानों को शामिल करने के ताल्लुक से ये एक मुनफरिद पहल है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 बरस में मनशियात को जब्त करने में 7 गुना इजाफा हुआ है। محکمہ موسمیات نے اگلے دو دن میں شمال مغربی بھارت میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔